तो आज हम लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन नाम रखा, रजिस्ट्रेशन किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद ने सर्वप्रथम जब इस्कॉन नाम दिया मंदिर का, यहां से शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी बोले, हम अपनी सोसाइटी को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। प्रभुपाद विनोदपूर्ण भाव से हंस पड़े जब उन्होंने पहले पहल यह नाम गढ़ा था। बौरी पर रहते हुए भी ही उन्होंने अपनी सोसाइटी के संस्थापन के संबंध में कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी थी, किंतु कानूनी कार्रवाई आरंभ करने के पूर्व भी वे अपने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ के विषय में बातें करते रहते थे, और इसलिए यह नाम भारत को लिखे गए उनके पत्रों में और विलेज वायस पत्रिका में प्रकट हो चुका था। एक मित्र ने ऐसा नाम सुझाया था जो पश्चिम के लोगों के लिए अधिक परिचित लगता। वह नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, किंतु प्रभुपाद का आग्रह कृष्ण कॉन्शियसनेस पर था। गॉड ईश्वर नाम अस्पष्ट था, जबकि कृष्ण यथार्थ और वैज्ञानिक था। गॉड कॉन्शियसनेस ईश्वर भावना मृत आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर और कम वैयक्तिक था, और यदि पश्चात लोग नहीं जानते थे कि कृष्ण ही ईश्वर हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ हर कस्बे हर गांव में उनकी महिमा को फैलाकर उन्हें बताएगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना मित्र शब्द भक्ति वेदांत स्वामी का 16वीं सदी में रचित शील रूप गोस्वामी की पद्यावली के एक वाक्यांश कृष्ण भक्ति रस भावित का अपना रूपांतर था, जिसका अर्थ है कृष्ण की भक्ति संपन्न करने के मधुर रस में निमग्न रहना। किंतु इस्कॉन के एक लाभ न कमाने वाले कर मुक्त धर्म के रूप में विधिवत पंजीयन के लिए धन और एक वकील की आवश्यकता थी। कार्ल एर्जेंस ने धार्मिक राजनीतिक सामाजिक कल्याणकारी संगठनों के निर्माण का कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था, और जब वह बौरी पर प्रभुपाद से मिला था तो उसकी सहायता करने को वह राजी हो गया था। उसके अपने वकील स्टीफन गोल्ड स्मिथ से संपर्क किया था। स्टीफन गोल्ड स्मिथ जो एक यहूदी नवयुवक था और जिसकी पत्नी और बच्चे थे, तथा पार्क एवेन्यू में जिसका कार्यालय था, आध्यात्मिक आंदोलन में रुचि रखता था। जब कार्ल ने उसे प्रभुपाद की योजना के बारे में बताया, तो वह तत्काल एक भारतीय स्वामी के लिए एक धार्मिक संस्था स्थापित करने के विचार से आकर्षित हुआ। वह 26 सेकेंड एनयूए में प्रभुपाद से मिला और दोनों ने संस्था संस्थापन कर मुक्ति, प्रभुपाद की आप्रवासन स्थिति और कृष्ण भावना मित्र के विषय में विचार विनिमय किया। गोल्ड स्मिथ प्रभुपाद से कई बार मिला। एक बार वह अपने बच्चों को साथ लाया, जिन्हें स्वामी जी द्वारा तैयार किया हुआ सूप झोल बहुत पसंद आया। प्रभुपाद जी अपने हाथ से बनाए थे सूप और झोल। वह उसकी शाम की कक्षाओं में आने लगा, जहां वह श्रोता मंडली में प्राय अकेला गैर हिप्पी सदस्य होता था। एक शाम को सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर लेने और नियमीकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार होकर गोल्ड स्मिथ नई सोसाइटी के न्यायाधीशों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद के व्याख्यान और कीर्तन में आया। जुलाई 11 प्रभुपाद व्याख्यान दे रहे हैं। गोल्ड स्मिथ पतलून और कमीज और टाइर पहने हुए दरवाजे के निकट फर्श पर बैठा हुआ, पड़ोस में होने वाले शोरगुल से विचलित न होता हुआ ध्यानपूर्वक व्याख्यान सुन रहा है। प्रभुपाद समझाते रहे हैं कि विद्वान लोग किस तरह भगवद गीता की अभक्तिपूर्ण व्याख्याओं द्वारा अबोध जनता को बहकावा कर रहे हैं, और अब वकील की सामान्य उपस्थिति के स्वीकृति स्वरूप और मनो गोल्डस्मिथ का ध्यान और अच्छी तरह आकृष्ट करने हेतु वे व्याख्यान के विषय में मध्य उसका परिचय प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दूंगा कि चीजों की गलत व्याख्या किस तरह की जाती है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे अध्यक्ष गोल्डस्मिथ जानते हैं कि विशेषज्ञ वकील अपनी व्याख्याओं द्वारा किस तरह कई चीजों कर सकते हैं। जब मैं कलकत्ता में था तो सरकार ने किराया संबंधी एक कानून बनाया और एक विशेषज्ञ वकील ने अपनी व्याख्या द्वारा उसका पूरा अर्थ ही बदल दिया। सरकार को फिर से नया कानून बनाना पड़ा क्योंकि इस वकील की व्याख्या द्वारा सरकार के आशय पर पानी फिर गया। अतः हम यहाँ कृष्ण के उद्देश्य को, जिसके लिए गीता का निर्माण हुआ था, नष्ट करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अनकृत व्यक्ति कृष्ण के उद्देश्य को विफल करने में लगे हैं या अनकृत हैं। अच्छा, मैं गोल्डस्मिथ, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, आप हमसे कोई प्रश्न पूछिए। श्री गोल्डस्मिथ खड़े होते हैं और वहां एकत्रित लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए एक संक्षिप्त घोषणा करते हैं, जिसमें स्वामी जी के नए धार्मिक आंदोलन के निगम के दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ताओं की मांग करते हैं। प्रभुपाद, वे यहां उपस्थित हैं, आप उनके पते अभी ले सकते हैं। श्री गोल्डस्मिथ, मैं अभी ले सकता हूं? हां। प्रभुपाद जी, हां आप ले सकते हैं। बिल, तुम अपना पता दे सकते हो, और रफेल, तुम अपना पता दे सकते हो। तो जितने लोग वहां बैठे थे सबका नाम लेके प्रभुपाद जी ने बताया कि ये लोग आपको अपना पता दे देंगे। बैठक जो ही समाप्त होती है, न्यायाधीशों के रूप में हस्ताक्षर के लिए जिनके नाम पुकारे गए थे, वे उस छोटे स्टोव फ्रंट के सामने आकर खड़े हो गए, और वकील ने अपनी पतली सी अटैची से जो पन्ने निकाले, उनको सरसरी निगाह से देखने और यथा निर्देश उस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। फिर भी उनमें से एक भी व्यक्ति कृष्ण भावना के प्रतिबद्ध नहीं था। मिस्टर गोल्डस्मिथ को यथा आवश्यक संख्या में हस्ताक्षरकर्ता मिल जाते हैं। वे थोड़े से ऐसे लोग हैं जो स्वामी जी से सहानुभूति रखते हैं और उनकी सहायता के लिए उनके मन में पर्याप्त सम्मान है। सर्वप्रथम न्यासी जो संघ का अगला वार्षिक अधिवेशन होने तक एक वर्ष के लिए पदाधिकारी रहेंगे। माइकल ग्रांड जो दस्तावेज में पढ़े बिना ही अपने हस्ताक्षर कर देता है और पता लिख देता है, माइक की मृत जैन और जेम्स ग्रीन हैं। इसमें से किसी का भी इरादा धार्मिक संघ के ट्रस्टी के रूप में किसी भी औपचारिक दायित्व को गंभीरतापूर्वक हाथ में लेना नहीं है, किंतु स्वामी जी के वर्तमान संघ को कानूनी अस्तित्व में लाने के लिए अपने हस्ताक्षर से उनका सहायता करने में उन्हें प्रसन्नता हुई। कानून के अनुसार न्यायियों का एक दूसरा दल दूसरे साल के लिए कार्यभार संभालेगा। वे हैं पाल, गार्डिनर, राय और डॉन। तीसरे वर्ष के न्यायिस्ट में कार्ल एयरजेंस, बिल एक्सटीन और रेफेल। उनमें से कोई भी ठीक ठाक नहीं जानता था कि आधे दर्जन कानून आकर मैं टंकित पृष्ठों का आशय क्या है, सिवाय इसके कि स्वामी जी एक सोसाइटी बना रहे हैं। सबको अर्थ पता नहीं था, साइन कर दिए थे, लेकिन प्रभुपाद जी का आदर करते हुए सब लोगों ने साइन किया था, और उसका अर्थ नहीं समझते थे कि क्या हो रहा, वो समझे कि एक सोसाइटी बना रहे हैं। सोसाइटी क्यों? कर से छूट के लिए यदि कोई बड़ी धनराशि अनुदान में दे और अन्य लाभों के लिए जो एक पंजीकृत धार्मिक सोसाइटी प्राप्त कर सके, किंतु वर्तमान परिस्थिति में ये उद्देश्य न तो बहुत महत्वपूर्ण है और न प्रासंगिक अनुदान देने कौन जा रहा है। गोल्डस्मिथ के अतिरिक्त किसके पास इतना धन था। संस्था इसलिए बना रहे थे प्रभुपाद जी कि कभी भविष्य में धन आएगा तो उसके लिए सोसाइटी रहेगा तो अच्छा। किंतु प्रभुपाद अपनी योजना भविष्य के लिए बना रहे हैं और उनकी योजना कर में छूट से कहीं अधिक के लिए है। वे अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की सेवा करने और शास्त्रों की उस भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक आध्यात्मिक आंदोलन कलयुग में 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। अत्यंत विस्तार वाले कलयुग में 4,32,000 वर्षों तक रहेगा। 1960 ईस्वी का दशक एक क्षुद्र क्षण के समान है। वेदों में वर्णन है कि विश्व का कालचक्र 4 युगों में संचरण करता है और कलयुग सबसे निकृष्ट समय है। इसमें मनुष्य के सभी आध्यात्मिक गुणों में ह्रास होता जाता है। जब तक कि मानवता सभी मानवीय सदाचारों से वंचित होकर अंततः पशुता की सभ्यता की कोटि में नहीं पहुंच जाती, परंतु वैदिक साहित्य आध्यात्मिक जीवन के एक स्वर्ण युग की भविष्यवाणी करता है जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से आरंभ होकर 10,000 वर्ष तक रहेगा। यह ऐसा काल प्रवाह होगा कि कलयुग की धारा के विपरीत बहेगा। एक ऐसी दृष्टि के लिए हुए जो कल्पांत और उनके परे तक पहुंचाती है, फिर भी अपने दो पैर सेकेंड एवेन्यू की धरती पर दृढ़ता से जमाया हुआ प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ का समारंभ कर दिया। उनके ऊपर बहुत से व्यावहारिक उत्तरदायित्व हैं, किराए का भुगतान, अपने संघ का पंजीयन, अर्धमान विश्वव्यापी भक्त मंडली का मार्ग प्रशस्त करना आदि। तो भी वे नहीं मानते कि उनके लघु समारंभ से उनके दिव्य उद्देश्य का महत्तर क्षेत्र किस तरह सीमित होता है। वे जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण पर अवलंबित है, इसलिए वे सफल होते हैं या विफल यह परमेश्वर पर निर्भर है। उन्हें केवल प्रयत्न करना है। इस्कान के निगमन की धाराओं में जो उद्देश्य उल्लिखित है वे प्रभुपाद की विचारधारा को उद्घाटित करते हैं। इसके 7 बिंदु उन बिंदुओं के समान है जो 1953 ईस्वी में झांसी भारत में गठित लो ऑफ डीओटीज को नियमावली में दिए गए थे। वह पर्याप्त विफल रहा था, फिर भी उसके उद्देश्य अपरिवर्तित बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय किस भावना मित्र संघ के 7 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जिससे जीवन मूल्यों में असंतुलन रोका जा सके और विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। दूसरा नंबर कृष्ण भावना का प्रसार करना, जैसा कि भागवत गीता और श्रीमद् भागवत में उद्घटित है। तीसरा संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें आज सत्ता कृष्ण के निकटतर ले जाना और इस प्रकार सदस्यों और संपूर्ण मानवता में इस धारणा का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर कृष्ण के गुणों का भिन्न अंश है। चौथा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पावन नाम के सामूहिक गायन की शिक्षा देना और उसे प्रोत्साहित करना। पांचवा सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना। छठा सरलतर और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से सदस्यों को एक दूसरे के अधिक निकट लाना। सातवां उपयुक्त उद्देश्यों की सिद्धि को दृष्टि में रखते हुए पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण करना। इस्कान के अधिकृत सदस्यों ने संघ के उद्देश्यों के संबंध में जो भी सोचा था प्रभुपाद ने उन्हें तत्कालिक यथार्थताओं के रूप में देखा। जैसा कि श्री रुबेन ने जो एक उपमार्ग कंडक्टर थे और 1965 में प्रभुपाद से मैनहट्टन के पार्क में एक बेंच पर मिले थे, लिखा था वे यह जानते प्रतीत होते हैं कि उनके पास अनेकानेक मंदिर होंगे जो भक्तों से भरे होंगे। मंदिर और ग्रंथ अनेक हैं। उन्होंने कहा उनका अस्तित्व है, वे विद्यमान हैं। किंतु समय में उनसे अलग रखा रहा। चार्टर में उल्लेखित पहला उद्देश्य प्रचार था। प्रचार एक ऐसा शब्द था जिसका प्रयोग प्रभुपाद बार बार करते थे। उनके लिए प्रचार शब्द का महत्व केवल धर्मोपदेश से कहीं अधिक था। प्रचार का अर्थ था परमेश्वर के नाम पर भव्य निस्वार्थ पूर्ण साहसी अभिमान। चैतन्य महाप्रभु ने समस्त दक्षिण भारत में घूमकर प्रचार किया था और उन्होंने हजारों लोगों को अपने साथ भावतिरेक में संकीर्तन और नृत्य के लिए प्रेरित किया था। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथ रथ में खड़े होकर भागवत गीता का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने प्रचार किया था, ईसा मसीह ने प्रचार किया था और सभी विशुद्ध भक्त प्रचार करते हैं। इस्कान के प्रचार से उस वस्तु की उपलब्धि होगी जिसे लोग ऑफ नेशंस तथा यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं नहीं प्राप्त कर सकती, अर्थात विश्व में वास्तविक एकता और शांति। इस्कान के कार्यकर्ता इस संसार में शांति की स्थापना करेंगे जो भौतिकता और कलह से घोर रूप में पीड़ित हैं। वे व्यवस्थित रूप से में आध्यात्मिक ज्ञान का संप्रदाय निरपेक्ष भगवत विज्ञान के ज्ञान का प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं था कि जुलाई 1966 ईस्वी में एक नए धर्म का जन्म हो रहा था, बल्कि भगवान के शाश्वत प्रचार के पौधे को जो संकीर्तन नाम से विख्यात है पूर्व से पश्चिम में प्रतिरोपित किया जा रहा था। सोसाइटी के सदस्य इकट्ठे होंगे और भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को सुनकर एवं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके उन्हें अनुभूति होगी कि उनमें से प्रत्येक चेतन जीवात्मा था जो परमेश्वर कृष्ण से शाश्वत रूप में संबंध था। तब वे इस्कान प्रचार समस्त मानव समाज में करेंगे, विशेषकर भगवान के पावन नाम के संकीर्तन के माध्यम से। इस्कान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के एक पवित्र धाम का भी निर्माण करेगा। क्या यह स्टोरफ्रंट से परे की बात थी? हाँ, निसंदेह प्रभुपाद कभी कोई छोटी बात नहीं सोचते थे। वे यह जानते प्रतीत होते थे कि वे भक्तों से भरे मंदिरों का निर्माण करेंगे। वे चाहते थे कि इस्कान एक सरल और अधिक सहज जीवन पद्धति का प्रदर्शन करे। प्रभुपाद के विचार में भारत के गांव का जीवन था, जहां लोग ठीक वैसा ही जीवन बिताते थे जैसा कृष्ण ने बिताया था। ऐसी ही जीवन पद्धति कृष्ण भावना अमृत के विकास के सर्वथा अनुकूल थी और इन सभी छह उद्देश्यों की पूर्ति सातवें से होगी। इस्कान साहित्य प्रकाशित करेगा और उसका वितरण करेगा, यह एक विशेष आदेश था जो शिल भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने शिल प्रभुपाद को दिया था। उन्होंने 1932 ईस्वी में वृंदावन में राधा कुंड पर एक दिन उनसे विशेष रूप से कहा था, यदि तुम्हें कभी भी कोई धन मिले तो उसे पुस्तक प्रकाशित करना। निश्चय ही हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी को भी स्वामी जी के सपनों का तत्कालीन स्वरूप स्पष्ट नहीं था, तो भी वे सातों देश न्यूयॉर्क के कतिपय सरकारी अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए आस्तिककर्तापूर्ण काव्यक्तियों की अवतारणा मात्र नहीं थे। प्रभुपाद चार्टर की प्रत्येक धारा को कार्य रूप में परिणित करना चाहते थे। यह सही है कि इस समय वे नितांत सीमित परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। पूजा का मुख्य स्थान जो 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क के प्रदेश जिले और नगर में स्थित था, अंतर्राष्ट्रीय किस भावना मित्र संघ का एकमात्र मुख्यालय था। फिर भी प्रभुपाद इस बात पर बल देकर कहते थे कि 26 सेकंड एवेन्यू में नहीं रह रहे हैं, उनकी दृष्टि लोकातीत थी। उनके गुरु महाराज आध्यात्मिक ध्यान के परंपरागत पवित्र स्थानों से निकलकर कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली जैसे स्थानों में प्रचार करने गए थे। प्रभुपाद कहते थे कि तब भी उनके गुरु महाराज इन नगरों में से किसी में कभी नहीं रहे, वरन उनका निवास सदर वैकुंठ में था, अर्थात आध्यात्मिक लोक में, क्योंकि वे सदा भक्ति में लीन रहते थे। उसी तरह 26 सेकंड एन्यू स्थिति पूजा स्थल न्यूयॉर्क का एक स्टोर फ्रंट नहीं था, जो कभी अजायबी वस्तुओं की दुकान रह चुका था। उस स्टोर फ्रंट और उस प्रकोष्ठ का आध्यात्मिकरण हो चुका था और अब वे लोकतीत स्वर्ग थे। समग्र मानव समाज वहां आ सकता था और जाति अथवा धर्म के भेदभाव बिना पूरा संसार वहां शरण पा सकता था। यद्यपि वह बहुत सादा छोटा और विपन्न था, किंतु प्रभुपाद की दृष्टि में वह कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं का पवित्र धाम था। वह विश्व का मुख्यालय था, प्रकाशन गृह था, पवित्र तीर्थस्थल का स्थल था और ऐसा केंद्र था जहां से भक्तों की सेना निकलकर संसार की सभी सड़कों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेगी। समस्त ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ से जो यहां स्थापित हो रहा था कृष्ण भावना मित्र प्राप्त कर सकेगा। कीत के रूप में प्रभुपाद को एक निष्ठावान अनुयायी मिला था। दोनों की भेंट होने के एक सप्ताह के अंदर कीत मार्ट स्ट्रीट की प्रकोष्ठ से निकलकर प्रभुपाद के साथ रहने का लिए आ गया। वह अब भी चिथड़ों जैसी डेनिम की पैंट और टी शर्ट पहनता था, पर वह स्वामी जी के लिए सौदे खरीदने और खाना बनाने का काम करने लगा था। भारत में रहते हुए कीत धार्मिक पुरुषों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन और शिष्यता के अनुशासन के कुछ नियम सीख चुका था। स्वामी जी के प्रति उसके अर्पण की उसके मित्र उत्सुकता पूर्वक देखा करते थे। कीत, मैंने देखा कि वे भोजन बना रहे हैं तो मैंने पूछा कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। वे मेरे इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। पहले एक दो बार वे मुझे अपने साथ बाजार करने के लिए ले गए, उसके बाद मैं स्वयं ही अकेले जाने लगा। उन्होंने मुझे दिखाया कि बिना बेलन के ही गूदे आटे को केवल अंगुलियों से फैलाकर चपाती कैसे बनाई जाती है। हम प्रतिदिन चपाती, भारत दाल और सब्जियां बनाते थे। इस तरह कीत प्रभुपाद के घर में एक भरोसेमंद रसोईया और व्यवस्थापक बन गया। इस बीच मार्ट स्ट्रीट के प्रकोष्ठ में रहने वालों के बीच स्वामी जी के साथ उनका संबंध आम चर्चा का विषय बन गया। हर एक का यही विचार था कि यह संबंध गंभीर था। वे जानते थे कि स्वामी जी गुरु थे और जब उन्होंने सुना कि वे अपने ऊपर के प्रकोष्ठ में प्रतिदिन सवेरे 6 बजे प्रवचन देंगे तो उनके मन में वहां जाने की उत्कंठा हुई। मैं बोवरी होकर घूमने जाया करता था और उनके लिए फूलों की टो में रहता था। जब फूल न मिलते तो मैं कुछ घास या फूस ले आता था। मुझे सवेरे वहां जाना बड़ा अच्छा लगता था। होवर्ड हरे कृष्ण कीर्तन करता हुआ और पहले से बहुत अच्छा अनुभव करता हुआ मैं द्रुत गति से स्वामी जी के यहाँ जाता था। आश्चर्य है कि लोअर ईस्ट साइड अब मनहूस नहीं लगता था। फुटपाथ और इमारतें चमचमाती थी और प्रातः की बेला में धुआं और कोहरा भरने के पहले आकाश लाल और सुनहरा होता था। चुक मैंने कुछ अंगूर लिए और मैं स्वामी जी के द्वार पर गया। जब कुछ नया था, पहले मैं मेडलुगल स्ट्रीट की ओर जाता था, बोहेमिया की ओर अर्थात सुंदर न्यूयॉर्क की ओर, और अब मैं लोअर ईस्ट साइड की ओर जा रहा था जो व्यावसायिक क्षेत्र थी, जहां न कोई मौजी था, न कलाकार, न संगीतज्ञ, वरन केवल स्मार्ट इमारतें थी और जिस कारण भी हो रंग रंगलियों से भरे वातावरण के बाहर वहां इंद्रियों और हृदय के लिए सर्वाधिक आकर्षण था। होवर्ड मैं पूरे रास्ते गाता हुआ प्रवेश द्वार तक जाता था और तब एसी भक्तिवेदांत स्वामी के नाम पर लगी घंटी बजा देता, दरवाजे मरमराता और खुल जाता। मैं गैलरी में से होता हुआ छोटे से आंगन में पहुंचता और वहां से अंगुलियों के बल इस तरह की पड़ोसी जान न जाए मैं ऊपर दो मंजिले पर उनके छोटे से प्रकोष्ठ तक चढ़ जाता था। चुक नाम का व्यक्ति बोल रहा है, मैं उनकी इमारत के हाल में गया और वहां पत्र पेटियों के ऊपर बहुत सारे नाम अंकित मिले। मैंने तुरंत एसी भक्ति वेदांत स्वामी नाम एक फटे हुए कागज के टुकड़े पर हाथ से अंकित किया जो एक खांचे में धसा हुआ था। घंटी बजाकर मैं प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद जोर से मरमराता हुआ दरवाजा खुला और मैं सुरक्षा ताले वाले द्वार से अंदर घुसा। मैं छोटे से बगीचे को पार कर पीछे की इमारत में पहुंचा और ऊपर चढ़ गया। प्रभुपाद ने लगभग दो महीने अपने उस एकांत कमरे में कक्षाएं ली। यह वही कमरा था जहां वे टाइप करते थे और अतिथियों से मिलते थे। कीर्थ के लिए यह न केवल दर्शन की कथा थी वरन मधुरता का रहस्यमय अनुभव भी था। कीर्थ उनकी वाणी की ध्वनि सूर्योदय की बेला हम कुछ मिनटों के लिए कीर्तन करते धीरे धीरे तालियां बजाते हुए और तब स्वामी जी प्रवचन देते। जिस बीच ने उन्हें सबसे अधिक बसीभूत किया वह उनकी वाणी की ध्वनि थी। विशेषकर जब वे संस्कृत में कीर्तन करते होते तो उनकी उपकृष्ट वाणी सुनना कानों के लिए मधुर संगीत के समान था। पड़ोसियों के शांत भंग न हो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कीर्तन मंद स्वर में करो क्योंकि पड़ोसी लोग जाग न जाए। और वे लड़कों से तालियां धीरे बजाने के लिए कहते थे। वहां प्रभुपाद जी इतना धीरे कि हाथों का केवल स्पर्श भर हो तब वे अपने आध्यात्मिक गुरु की वंदना करते। संसार दावानल निर्लोक गुरु महाराज कृपा सागर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं जैसे एक बादल बन के ऊपर अग्नि समन के लिए जल बरसाता है उसी तरह गुरु महाराज संसार की प्रज्वलित अग्नि को बुझा देते थे। नेत्र बंद किए हुए सवेरे की मंद प्रकाश में बैठे गा रहे थे। कीत हॉवर्ड चुप स्टीव चार पांच जो इनके शिष्य थे बैली जो थोड़े से लोग वहां उपस्थित थे भाव विभोर हो रहे थे। इसके पहले स्वामी जी का इतना अधिक प्रभाव कभी नहीं हुआ था। चुक बोल रहा है स्वामी जी वहां बैठे थे और सवेरे की बेला में वे उतने प्रभाव और तेजस्वी नहीं प्रतीत होते थे प्रत्युत वे बहुत आत्मस्थ लगते थे। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो एक पाषाणी खंड की तरह सदा उसी तरह बैठे रह सकते थे। उनके नेत्र प्रकाश विकीर्ण करते हुए दो छोटे छिद्र लगते थे। उन्होंने अपने मंजीर उठाए और बहुत हल्के ढंग से उनके किनारों पर ताल दी एक दो तीन फिर वे गंभीर स्वर में गाने लगे ऐसी स्वर में जो विराम कालों में बेसुरा सा हो जाता था। यह ऐसा एक सुर का संगीत था जिससे न आनंद की अभिव्यक्ति हो रही थी न विषाद की। यह एक चिर संगीत था जो कुछ कथा नहीं कह रहा था। हम उनके साथ जितनी अच्छी तरह हमसे हो सका कीर्तन करते रहे किंतु स्वामी जी कई बार रुके और बोले मंद स्वर में करीब 30 मिनट कीर्तन करने की करना चाहिए क्योंकि कभी कभी पड़ोसी शिकायत करते हैं। तो अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि मंद गति में कीर्तन करो क्योंकि पड़ोसी लोग शिकायत करते हैं। गायन के बाद स्वामी जी एक लड़के को डॉक्टर राधा कृष्ण के संस्करण की भागवत गीता की एक प्रति देते हैं और उसे उच्च स्वर में पढ़ने को कहते हैं। वे उसके अशुद्ध उच्चारण को ठीक करते हैं और हर श्लोक की व्याख्या करते हैं। चूंकि वहां बहुत थोड़े लोग उपस्थित होते थे इसलिए हर एक को दर्शन पर विचार विमर्श के लिए हमेशा पर्याप्त समय मिल जाता था। कक्षा कभी कभी डेढ़ घंटे तक चलती रहती थी और उसमें 3 से 4 श्लोक तक हो जाते थे। स्टीव भक्त बोल रहा है स्वामी जी ने चर्चा की कि आम फलों का राजा है और उन्होंने यह भी कहा कि इस देश में आम आसानी से नहीं मिलते। मेरे मन में विचार आया कि मैं उनके लिए आम ला सकता हूं। फर्स्ट एवेन्यू में एक स्टोर था जो कूलर में ताजे आमों का स्टॉक हमेशा रखता था। तो मैंने अपनी आदत बना ली, प्रतिदिन कार्य से अवकाश होने पर मैं एक बढ़िया आम खरीदता और उसे स्वामी जी के पास ले जाता। बैली नाम का भक्त बोल रहा है, कुछ लड़के कहते हैं मैं स्वामी जी के लिए यह कर रहा हूं, इसलिए मैं स्वामी जी के पास गया और बोला क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि उनकी कक्षा में मैं नोट लिखा करूं। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा सेवा करना चाहते हो तो हमारी कक्षा में बैठो और नोट लिखो। लड़कों को विश्वास था कि स्वामी जी के प्रति उनकी सेवा आध्यात्मिक सेवा या उनके प्रति भक्ति थी। गुरु महाराज की सेवा करना जो कृष्ण के प्रतिनिधि थे, सीधे कृष्ण की सेवा करना था। एक दिन सवेरे प्रभुपाद ने होवर्ड से कहा कि कृष्ण भावना मित्र के दर्शन का प्रसार करने के लिए उन्हें आपकी सहायता चाहिए। होवर्ड उनकी सहायता करना चाहता था, इसलिए वो स्वामी के श्रीमद् भागवत की पांडुलिपियों को टाइप करने को तैयार हो गया। होवर्ड पहले इस श्लोक के प्रथम शब्द थे ओ डिंग किंग, और स्वभावतः मैं सोचने लगा कि ऐसा न हो कि ओ किंग का नाम हो और डिंग किंग उसका सामान्यकरण हो। कुछ समय बाद मेरी समझ में आया कि ओ डिंग किंग की जगह उनका आशय ओ किंग से था। मैंने उनकी अनुमति के बिना गलती ठीक नहीं की। हाँ, उन्होंने कहा कि इसे ठीक कर दो। फिर मैं उन्हें कुछ परिवर्तन सुझाने लगा और कहा कि यदि वे चाहें तो मैं संशोधन कर सकता हूँ। मैंने यह भी बताया कि मैं अंग्रेजी में यम यस यम ए था और ओहियो स्टेट में पढ़ा चुका था। ओ हाँ, स्वामी जी ने कहा संशोधन कर दो, इसे बढ़िया बना दो। वे उन्हें भक्ति योग की धारणा समझा रहे थे। हो सकता है कि कोई भक्त आरंभ में पूर्ण न हो, उन्होंने कहा, किंतु यदि वह सेवा में लग गया है और जो ही उसकी सेवा का आरंभ हो गया है त्यो ही वह पूर्ण बन सकता है। सेवा का स्थान सर्वत्र है, भौतिक संसार में भी और आध्यात्मिक जगत में भी है। भौतिक संसार की सेवा से आत्मतोष नहीं होता, केवल व्यक्ति से जो शुद्ध सेवा है कृष्ण की सेवा है। आत्मतोष मिल सकता है और कृष्ण की सेवा का सर्वोत्तम ढंग कृष्ण की प्रतिदिन की सेवा करना है। लड़कों की समझ में बात बहुत जल्दी आ गई। यह ऐसा काम था जो सरलता से किया जा सकता था। यह ध्यान करने जैसा कठिन नहीं था, यह क्रिया प्रधान था। कुछ कार्य करना था और वह कार्य कृष्ण के लिए था। उन्होंने देखा कि स्वामी जी ने बौरी के उस आवारे के साथ कैसा व्यवहार किया था, जो उसके पास शौचालय में प्रयोग होने वाले कागज का उपहार लेकर आया था। जरा देखो, स्वामी जी ने कहा था कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है, लेकिन उसने सोचा मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए। किंतु सेवा इच्छित होनी चाहिए, प्रेम से प्रेरित होनी चाहिए, बल से नहीं। बैली नाम का उनका भक्त है, वो बोला एक बार स्वामी जी ने मुझसे पूछा क्या तुम सड़क में चलते समय वैष्णव तिलक लगाए रख सकते हो। फॉरनर से कह रहे हैं कि ये जो तिलक लगाते हैं वो सड़क पे लगा के आज हमारा इंडिया में लोग लगाना शर्माते हैं। ये प्रभुपाद जी उससे कहते हैं कि क्या तुम सड़क पर वैष्णव तिलक लगा करके चल सकते हो। मैंने उत्तर दिया ऐसा करना मुझे बड़ा हास्यजनक लगेगा। 10 लोग हंसेंगे, मुझे भी हास्यजनक लग रहा है, किंतु यदि आप चाहते हैं तो मैं करूंगा। स्वामी जी बोले नहीं, मैं तुमसे कोई ऐसा काम करने को नहीं कहता जिसे तुम करना नहीं चाहते। प्रभुपाद जी फोर्स नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो स्टीव नाम का भक्त बोला एक दिन जब नित्य की भांत मैं स्वामी जी के लिए आम लाया तो उस समय वे अपने कमरे में भक्तों से घिरे थे। मैंने उन्हें आम दिया और बैठ गया और वे बोले बहुत अच्छा लड़का है। जिस ढंग से उन्होंने कहा उससे लगता था कि मानो मैं एक छोटा बच्चा हूं। उससे उस कमरे में हर आदमी हंसने लगा और मैं अपने को बेवकूफ सा अनुभव करने लगा। किंतु स्वामी जी ने यह कहकर सबका मनोभाव बदल दिया, नहीं, ये वास्तव में मेरा प्रेम है, ये कृष्ण भावना मित्र है। उसके आगे कोई नहीं हंसा। जब वार्ड संपादन में पहले पहल तत्पर हुआ तो उसमें सवेरे का सारा समय स्वामी जी के कमरे में काम करने में लगाया। उसने कहा यदि टाइप का और कुछ काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे मार्ट स्ट्रीट में ले जा सकता हूं और वहां से टाइप करके ला। और अधिक अभी तो बहुत सारा है, स्वामी जी ने कहा। उन्होंने अलमारी खोली और उससे केसरिया कपड़े में बंधी पांडुलिपियों के दो बड़े बंडल निकाले। उन्होंने प्रभु दादा अनुमति श्रीमद् भागवत पास पास पंक्तियों में लिखी। पांडुलिपियों के हजारों पृष्ठ थे और आश्चर्यचकित होकर उसके सामने खड़ा हो गया। यह तो जीवन भर का टाइपिंग है। प्रभुपाद जी से पूछा और कोई टाइपिंग करना है, तो प्रभुपाद जी ने पूरा बंडल निकाल दिया। उसका पूरा जीवन लग जाएगा मुझे टाइप करते करते। कार्य आरंभ, उसने कहा। अरे प्रभुपाद मुस्कुराने लगे और बोले, ओह हाँ अनेक जीवन का। प्रभुपाद जी बोले, आप बहुत जीवन लग सकता है। प्रभुपाद की उपस्थिति, उनके अभिभाव भाषणों और कीर्तनों के कारण अब हर एक स्टोर फंड को मंदिर का कर पुकारने लगा था, किंतु फिर भी वह अभी तक एक खाली कुत्सित स्टोर फंड था। उसको सजाने की प्रेरणा मार्ट स्ट्रीट के लड़कों से मिली। होवर्ड, कीथ और वैली ने एक योजना बनाई कि जब स्वामी जी संध्या कालीन कीर्तन में आए तो उन्हें आश्चर्य में डाला जाए। सब छात्रों ने जो प्रभुपाद जी के शरणागत थे, उन लोगों ने कहा कि आज प्रभुपाद जी को हम लोग थोड़ा संध्याकालीन में आश्चर्य में डाल देंगे। वैली ने सबके कमरों में से पर्दे हटा दिए, उन्हें धुलाई की मशीन में डाला जिसका पानी गंदगी से गहरा भूरा हो गया और फिर बैगनी रंग में रंग दिया। मार्ट स्ट्रीट का प्रकोष्ठ पोस्टरों, चित्रों और हॉवर्ड तथा कीथ द्वारा भारत से लाए गए सजावटी रेशम की बड़ी बड़ी लटकाओं से अलंकृत था। लड़कों ने उस सभी चित्रों, दीवार, दरियों, धूपदानों और अन्य वस्तुओं को इकट्ठा किया और बैगनी पर्दे के साथ वे उन्हें स्टोफंड ले गए और अपना सजावट का काम शुरू कर दिया। स्टोर फंड में लड़का ने प्रभुपाद के बैठने के लिए लकड़ी का एक मंच बनाया और उसे एक पुराने मखमली कपड़े से ढक दिया। मंच के पीछे की दीवार के उस भाग पर जो आंगन की ओर खुलने वाला दो खिड़कियां के बीच में था, उन्होंने बैगनी पर्दे टांग दिए। इनकी दोनों ओर दो नारंगी रंग के पर्दे टांग दिए। स्वामी जी के आसन के ठीक ऊपर नारंगी रंग के एक पर्दे से लगाकर उन्होंने वृत्ताकार कैनवस पर विचित्र राधा कृष्ण का एक विशाल मौलिक चित्र, जिसे जेम्स ग्रीन ने बनाया था, लटका दिया। प्रभुपाद ने जेम्स को चित्र बनाने का यह काम सौंपा था और नमूने के रूप में श्रीमद् भागवत का आवरण पृष्ठ उसे दिया था, जिस पर राधा कृष्ण का भारत में बना अनगढ़ चित्र था। राधा और कृष्ण की आकृतियां कुछ कुछ अस्पष्ट थी, किंतु लोअर ईस्ट साइड के आलोचकों ने, जो स्टोफंड में प्राय आया करते थे, इस चित्र को एक आश्चर्यजनक उपलब्धि बताया था। कीथ और होवर्ड को कम विश्वास था कि उनके द्वारा भारत से लाया गया चित्र और अनुकृतियों को प्रभुपाद पसंद करेंगे, इसलिए उन्होंने प्रभुपाद के आसन से दूर मंदिर से जाने वाली सड़क के निकट लटकाया। इनमें से एक चित्र आकृत जो भारत में विख्यात थी, वह थी जिसमें हनुमान आकाश मार्ग से एक पर्वत भगवान रामचंद्र जी के पास ले जाते हुए दिखाए गए थे। लड़कों को इसकी कोई धारणा नहीं थी कि हनुमान किस तरह के प्राणी थे। उनके ऊपर के होठ की शक्ल के कारण वे सोचते थे कि शायद ये एक बिल्ली थे। फिर छह बाहों वाले एक पुरुष को भी चित्र था, जिसके हरे रंग की दो बाहों में धनुष और बाण थे, नीले रंग की दो बाहों में बांसुरी थी और सुनहरे रंग की शेष दो बाहों में दंड और पात्र थे। तीसरे पहर तक वे बैठने के आसन को सजा चुके थे, पर्दे लटका चुके थे, सजावटी रेशमी लटकाने चित्रों और अनुकृतियों को लगा चुके थे और अब मंच की फूलों और मोमबत्तियों से सजाने में लगे थे। उनमें से कोई एक स्वामी जी के बैठने के लिए एक गद्दी और उनकी पीठ के सहारे के लिए भारी भरकम कुर्सी से ढक पुराना कुशन निकाल लाया। मार्टिसिस से आए सामान के अतिरिक्त सजावट नेल्सन ने अपने दादा के गैराज से बेल्जियम शैली का एक पूर्वी कालीन निकाला और भूगर्भ मार्ग से उसे वह 26 सेकंड एंडियो ले आया। राफेल और डान की सजावट में शामिल हुए। इस रहस्य को रहस्य ही बनाए रखा गया और लड़के स्वामी जी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस रात जब वे कीर्तन के लिए अंदर आए तब उन्होंने नवसज्जित मंदिर को देखा। वहां अगरबत्ती भी जल रही थी और संतोष से पलके उठाए ऊपर उठाए। तुम लोग आगे बढ़ रहे हो? कमरे में चारों ओर देखते हुए और खुलकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने आगे कहा, यही कृष्ण भावना मिलता है। प्रभुपा जी बहुत खुश हुए कि बच्चे सब सजा रहे हैं, कृष्ण का बना रहे हैं। कृष्ण भावना मिलता है। स्वामी जी की अकस्मात प्रसन्नता मुद्रा लड़कों को अपने सच्चे श्रम का पुरस्कार जैसे लगा। वो लोग को बहुत आनंद आया कि स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए, यही मेरा पुरस्कार है। तब वे मंच पर आए। लड़के सांस रोक कर आशा कर रहे थे कि वह मजबूत साबित होगा। स्वामी जी बैठ गए। भक्तों और सजावटों को देखकर हुए लड़कों ने स्वामी जी को प्रसन्न कर दिया, किंतु अब उन्होंने अत्यंत गंभीर मुद्रा धारण कर ली। और यद्यपि लड़के जानते थे कि वो वही स्वामी जी थे, किंतु उनकी ठी ठी हंसी उनके गले में अवरुद्ध हो गई और जो एक दूसरे की ओर प्रसन्नतापूर्वक दृष्टि निक्षेप कर रहे थे वह अनिश्चित और घबराहट के कारण बंद हो गई। स्वामी जी की गंभीरता को देखकर कुछ क्षण पहले कि उनकी प्रसन्नता अचानक बचकानी लगने लगी, जैसे बादल सूर्य को काली छाया की तरह जल्दी से ढक लेता है, उसी तरह स्वामी जी ने अपनी प्रसन्नता को गंभीरता से परिवर्तित कर दिया और लड़कों ने भी उन्हीं की तरह तुरंत गंभीर और सौम्य बनने का निश्चय किया। स्वामी जी ने अपने मंजीरे उठाए और सराहना सूचक मुस्कान की किरण विकीर्ण की। लड़कों ने हृदय भी फिर से उल्लसित हो गया बच्चों का। मंदिर अब भी एक छोटा सा स्टोफंड था जिसमें बहुत से प्रकट और अप्रकट तिलचट्टे रहते थे, जिसका फर्श ढलुआ था और जिसमें प्रकाश बहुत मंद था, किंतु चूंकि उसके सजावट के बहुत सारे सामान भारत के थे इसलिए उसका वातावरण यथार्थ था। विशेषकर मंच पर स्वामी जी की उपस्थिति होने से अब जो अतिथि वहां प्रवेश करते वे अपने को एकाएक एक छोटे से भारतीय मंदिर में पाते। माइक ग्रांट, मैं एक दिन सायंकाल वहां गया तो देखा कि अचानक वहां फर्श पर कालीन बिछे हैं और दीवारों पर चित्र और तस्वीरें लटकी हैं। अचानक ही वह इतना खिल उठा था और लोगों से भरा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि किस तरह कुछ दिनों के अंदर ही लोगों ने उतना विस्मयकारी चीजें वहां इकट्ठी कर दी थी। जब मैं उस संध्या को वहां गया और देखा कि उसे किस तरह अलंकृत किया गया था तो मुझे इस बात की बहुत चिंता नहीं रही कि प्रभुपाद अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। मैंने सोचा कि अब तो सचमुच इसका प्रभाव होने लगा है। प्रभुपाद ने अपने अनुयायियों के समूह को देखा। वे इस बात से दवित होते कि उनके अनुयायी किस तरह उनको इतना सम्मान दे रहे हैं और कृष्ण के स्टोरफ्रंट को सजाने का प्रयत्न कर रहे थे। किसी भक्त का कृष्ण को भेंट अर्पण करना उनके लिए कोई न कोई चीज नहीं थी, किंतु यह नया था। न्यूयॉर्क में इस भयानक स्थान में भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा था और उस कोमल अंकुर की समाधि के रूप में स्वाभाविक था कि कृष्ण की कृपा पर द्रवित हो जाते। दीवार पर लगे चित्रों को देखते हुए उन्होंने कहा, मैं कल आऊंगा, चित्रों को देखूंगा और तुम्हें बताऊंगा। समय तो है ना, अभी समय नहीं हुआ ना। कल चित्रों को देख लूंगा और फिर बताऊंगा कि उनमें कौन से अच्छे हैं। अगले दिन प्रभुपाद प्रदर्शित चित्रों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे आए। एक प्रेम किए हुए वाटर कलर के चित्र में एक व्यक्ति ढोल बजा रहा था और एक बालिका नृत्य कर रही थी, यह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा किंतु एक स्त्री का दूसरे चित्र अधिक संसारिक था और उन्होंने नहीं, यह चित्र उतना अच्छा नहीं है, तो मंदिर के पीछे की ओर लगाओ। हॉवर्ड कीथ और वैली उत्सुकतापूर्वक उनका अनुगमन कर रहे थे। जब उन्होंने छह भुजाओं वाले पुरुष का चित्र देखा तो कहा, ओ यह तो बहुत अच्छा है, ये कौन है? वैली ने पूछा। यह भगवान चैतन्य महाप्रभु है, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। उनकी छह भुजाएं क्यों हैं? उनके शिष्य ने पूछा। क्योंकि वे राम और कृष्ण दोनों थे, वे भुजाएं राम की हैं और वे भुजाएं कृष्ण की हैं। अन्य दो भुजाएं किन की हैं? कीर्ति ने पूछा। वे एक सन्यासी की भुजाएं हैं। वे दूसरे चित्र के पास गए, यह भी बहुत अच्छा, प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अच्छा है। भी ये कौन है? होवर्ड ने पूछा। ये कौन है? यह हनुमान है। क्या वे बिल्ली है? नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, वे वानर हैं। हनुमान को रामायण ग्रंथ में भगवान रामचंद्र के वीर स्वामी भक्त सेवक के रूप में महिमा मंडित किया गया है। करोड़ों भारतीय भगवान राम के अवतार और उनके सेवक हनुमान की पूजा करते हैं, जिनके कार्यकलापों को रंगमंच, चित्रपट, कला और मंदिर आराधना में निरंतर प्रदर्शित किया जाता है। हनुमान कौन थे, इस विषय में मार्कशीट के लड़कों का अज्ञान नगर के अभिजात वर्ग की उन वृद्धि महिलाओं से कम नहीं था, जो प्रभुपाद के यह पूछने पर कि क्या उनमें से किसी ने कृष्ण का चित्र देखा है, शून्य दृष्टि से ताकती रह गई। लोअर इस साइड के रहस्यवादी एक बिल्ली और हनुमान में अंतर नहीं कर सकते थे और वे भारत से, जो उनकी निगाहों में केवल नशाबाजों का भारत था, भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक चित्र ये जाने बिना के लाए थे कि वो कौन थे। तो भी इन लड़कों और उन भद्र महिलाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर था। वे लड़के स्वामी जी की सेवा कर रहे थे और हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। वे भौतिकवादी जीवन और मध्यवर्ग के परिश्रम और परिश्रमिक समष्टि का समझ चुके थे। स्वामी जी द्वारा प्रतिश्रुत विस्तृत कृष्ण भावना मित्र के प्रति उनके हृदय जाग उठे थे और उनकी व्यक्तिगत संगति में उन्हें उत्कर्ष जैसी किसी वस्तु की अनुभूति होने लगी थी। बौरी के उस आवारे लड़के की तरह जिसने प्रभुपाद के प्रवचन के मध्य उन्हें शौचालय में प्रयोग होने वाले कागज का उपहार दिया था, लोअर ईस्ट साइड के लड़कों का भी दिमाग बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। फिर भी जैसा कि प्रभुपाद समझ रहे थे, उनके हृदय के भीतर से कृष्ण उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। प्रभुपाद जानते थे कि कृष्ण का कीर्तन करने और उनके बारे में सुनने से उनमें शुभ परिवर्तन होगा। 1966 ईस्वी की ग्रीष्म ऋतु का अगस्त आ गया और प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक रहा, उनके लिए ये दिन बड़े अच्छे थे। न्यूयॉर्क वासियों को ग्रीष्म ऋतु की गर्म हवाओं से शिकायत थी, किंतु उससे उस पर व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं हुई। जो वृंदावन की प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में 100 डिग्री से ऊपर के तापमान का अभ्यस्त था, ये भारत जैसा ही है। वे कहते हैं जब वे बिना कमीज पहने ही बाहर निकलते, उन्हें लगता कि उन्हें पूरा आराम और चैन है। उन्होंने सोचा था कि अमेरिका में उन्हें उबलते हुए आलू खाकर जीवन बिताना होगा, अन्यथा मांस के अतिरिक्त वहां कुछ नहीं मिलेगा, किंतु यहां वे भारत की तरह ही प्रसन्नतापूर्वक वही भात दाल और चपाती खा रहे थे और उन्हीं तीन खानों के कुकर में पका रहे थे। जब वे सेकंड एनवी में आ गए थे, तब वे श्रीमद् भागवतम पर भी उनका काम नियमित रूप से चल रहा था और अब कृष्ण उनके पास इन कार्यनिष्ठ नविकों को भेज रहे थे। जो उनके लिए खाना पका रहे थे, टाइप कर रहे थे, नियमित रूप से उनका प्रवचन सुन रहे थे, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे तथा इससे वह अधिक ही जिज्ञासा कर रहे थे। प्रभुपाद आप भी एकाकी प्रचारक थे, वे स्वतंत्र थे कि रहें या जाएं। स्टोफन में रहने वाले लड़कों से नितांत स्वतंत्र वे कृष्ण के गहरे सानिध्य में अपनी पुस्तकें लिख रहे थे, किंतु अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना का संघ का संघ को अपने आध्यात्मिक बच्चों की तरह अपना लिया था। जिज्ञासु युवाजन जिनमें से कुछ एक महीने से अधिक समय से नियमित रूप से कीर्तन करते आ रहे थे, लड़खड़ाते हुए आध्यात्मिक शिशुओं की तरह थे और प्रभुपाद अनुभव करते थे कि उनके मार्गदर्शन का दायित्व उन पर है। वे प्रभुपाद को अपना आध्यात्मिक गुरु समझने लगे और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए कराने के लिए उन पर विश्वास करने लगे थे। यद्यपि उन बहुत सारे नियमों के तत्वकालीन पालन में असमर्थ थे जिनका अनुसरण भारत में ब्राह्मणों और वैष्णवों द्वारा किया जाता था, पर प्रभुपाद इस विषय में अस्वस्थ थे। रूप गोस्वामी के अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह था कि मनुष्य एन के एन प्रकारेण कृष्ण भावना मृतमय हो जाए। लोगों को हरे कृष्ण कीर्तन कराना चाहिए और भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। जो कुछ उनके पास है उसे कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए और प्रभुपाद कृष्ण भावना मृत के इस मूल सिद्धांत का अभ्यास उस परम सीमा तक कर रहे थे जिसके आगे पहुंचा वैष्णव मत के इतिहास में कोई नहीं मिलता था। यद्यपि वो खाना बनाने और टाइप करने के लड़कों को लगा रहे थे, किंतु प्रभुपाद स्वयं उनसे कुछ कम नहीं कर रहे थे। स्थिति यह थी कि यदि एक कार्यनिष्ठ व्यक्ति सेवा का अवसर मांगने के लिए आता तो 100 व्यक्ति ऐसे थे जो सेवा के लिए नहीं वरन चुनते देने आते थे। उनसे बात करते और कभी कभी चिल्लाकर और मुक्का तानकर प्रभुपाद को मायावादी दर्शन के विरुद्ध कृष्ण का समर्थन करना पड़ता था। यह भी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति उनकी सेवा थी। वे अमेरिका और अवकाश ग्रहण करने नहीं आए थे, इसलिए दिन प्रतिदिन इस बात की पुष्टि होती जा रही थी कि उनके काम और उनके अनुयायियों और उन्हें मिलने वाली चुनौतियों में वृद्धि होगी। वे कितने कर सकेंगे यह कृष्ण पर निर्भर था। मैं एक वृद्ध पुरुष हूँ, उन्होंने कहा, मैं किसी भी क्षण जा सकता हूँ, किंतु यदि उनका जाना इस समय हुआ तो निश्चय ही कृष्ण भावना मित्र का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भावना मित्र संघ उनके अतिरिक्त कुछ नहीं था। भाव विभोरता की अवस्था में सिर को आगे पीछे करते हुए कीर्तन का नेतृत्व करना, आंगन के आर पार होकर मंदिर या प्रकोष्ठ के बाहर आना जाना, घंटों बैठकर मुस्कुराते हुए दार्शनिक विचार विमर्श करना, इस तरह प्रभुपाद न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में कृष्ण भावना मित्र के सीमित सुकुमार और नियंत्रित वातावरण के एक मात्र धारक और पोषक थे। समय हो गया क्या? तो देखिए प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत किया था, कैसे कैसे लोगों के साथ शुरू किया इन्होंने इस संस्था को, और कैसे दारू पीने वाले और उनको मजाक उड़ाने वाले, उनको मुक्का तानने वाले लोगों का भी बात सहन करके प्रभुपाद जी ने इस संस्था को कितनी कोशिश से और कितनी मेहनत से नाम दिया इस्कान। इस्कान बनाने में प्रभुपाद जी का जितना परिश्रम हुआ है ऐसा कोई भी साधु नहीं कर सकता है। और प्रभुपाद जी को तो साधु नहीं कहना चाहिए, प्रभुपाद जी तो एक भगवान के दूत थे जो इस धराधाम पर आकर के चैतन्य महाप्रभु के वचनों को कृतार्थ करने के लिए विदेश गए, अपने गुरु महाराज के वचनों को कृतार्थ करने के लिए विदेश गए, और वहां पर विदेशियों को जिसको हनुमान के बारे में नहीं मालूम है, भगवान के बारे में नहीं मालूम है, ऐसा चित्र बना बना करके उनको समझाए प्रभुपाद जी, ये भगवान है, ये राम के दूत हनुमान जी हैं जिसको लोग बिल्ली बोलते थे। ऐसे अनभिज्ञ लोगों को प्रभुपाद जी ने कैसे भक्त बनाया, जहां पे भक्ति जीरो थी वहां से भक्ति को ऊपर उठाया प्रभुपाद जी ने। आज सारे दुनिया में हम किस भावनामृत को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी की कृपा है। तो हमें प्रभुपाद जी का ऋण कभी भी चुकाने का कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि इनका हम जीव के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। जितना भी हम परिश्रम करें वो सब कुछ कम है। प्रभुपाद जी अपने लिए नहीं किए, वो तो खुद ज्ञानी थे, वो तो खुद भक्ति में पूर्ण थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने जीव कल्याण के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया, अपने गुरु वचन को पालन करने के लिए कि पाश्चात्य जगत में जाओ, जहां पर जानवर की जिंदगी लोग जी रहे हैं, वहां से उनका उद्धार करो। इंडिया में तो कम से कम संस्कृति को जान रहे हैं, यहाँ की संस्कृति जो है वो समझ रहे हैं, लेकिन पाश्चात्य जगत में जानवर जैसे जी रहे हैं, वहां जाइए, वहां पर जाकर के प्रचार करिए, अपने गुरु के वचन को 70 साल की उम्र में पूरा करने के लिए इन्होंने बेड़ा उठाया, ये कोई सहज काम नहीं है। आज हम लोग इतनी उम्र में ही आलस करते हैं, प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में पाश्चात्य जगत में गए। जिसने उन्हें भेजा था, यहाँ सामने उनका मुरारजी करके बंगला है, और माता जी ने कहा कि प्रभुपाद जी आप पाश्चात्य जगत जाने के लिए बोल रहे हैं, तो इस जर्जर अवस्था में मॉडर्न देश में आपकी बात कौन सुनेगा। प्रभुपाद जी ने कहा मैं अपनी बात सुनाने नहीं जा रहा हूं, मैं कृष्ण का संदेश, चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेके जा रहा हूं, मेरे उनके वचनों में विश्वास है कि उनके वचन को सब सुनेंगे, मैं अपनी बात नहीं सुनाने जा रहा हूं। तो भगवान का संदेश सुनाने गए थे, इसलिए प्रभुपाद जी सक्सेस हुए। ऐसा कोई साधु हुआ नहीं, होगा नहीं, और था भी नहीं। तो हमें प्रभुपाद जी को आर्डिनरी साधु नहीं समझना चाहिए, हमें प्रभुपाद जी को भगवान का स्पेशल दूत समझना चाहिए, जो भगवान के बारे में पूरे संसार में भगवान के नाम का प्रचार किया, प्रसार किया, मंदिर बनाए, आज सारा विश्व ओत प्रोत है प्रभुपाद जी की वजह से, भगवान कृष्ण की भक्ति में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, राधा राज बिहारी भगवान के, गौर निताय भगवान के, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के, बोल प्रेमानंदे हरी।